सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
प्रधानमंत्री की अगर 5 देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात, उनका रुख समझें और अपनी भारत की बात बताएं। तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले, अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है, क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पे तेल का आना जाना रहता है।
देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर हॉर्मुज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही, देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहां से आ रहे हों तेल लेकर के या एलएनजी लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहां पे माइन बिछाई तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और यूएस के बीच में जो संघर्ष है उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इम्पोर्ट्स में भी। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूं, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए, किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारे मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, एलएनजी भी हमें अब चाहिए क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए एलएनजी भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें जरूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से, अभी जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारी आयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं, वियरा। ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है पांच जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना, तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे, और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी, इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
During the course of two-day foreign ministers meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. These three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS: strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, as well as the future direction of the grouping.
BRICS ke theme jo hai usme kaha gaya hai ki hum koshish karenge resilience, innovation, cooperation aur sustainability, aur unhone baat ki hai कि रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम, मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए।
देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा, उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा, और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो, वहां से हम शुरू करें, और तब उस पर हम वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाए, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी। अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या, बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है। जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें।
अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course people-to-people exchanges, which is also a very key key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the Global South. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
ये भी मांग रही है कि UN के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए. UN Security Council का जो membership है, permanent membership है, उनके पास veto power है. तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए. दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए. वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूँगा. आपने आज की दुनिया में जहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहाँ पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है. अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहाँ पर वो प्रस्ताव टूट जाता. तो ऐसे में तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा. इसलिए ये वीटो पावर को खत्म करना या इसको और डाइल्यूट करना, प्रतिनिधित्व पूरक करना, प्रतिनिधित्व परक करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ये बहुत आवश्यक हो जाता है. इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा परिषद में बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उनको भी पावर दी जाए, या मतलब जो वीटो पावर जो 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहाँ सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है. और देखिए, लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही है.
जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
देखिए, मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है. इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी. इसलिए समाधान ये है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है.
अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन.
ये सारे मैनमेड है,
मैनमेड है. लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता. तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहाँ के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है.
जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की. ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष. शुक्रिया.
धन्यवाद.
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में